अध्याय एक, हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना आज एक स्वतंत्र और समृद्ध गद्य विधा के रूप में स्वीकृत है। अन्य गद्य विधाओं की तरह आलोचना का विकास भी आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही माना जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय आचार्य काव्य सौंदर्य के विधायक तत्वों का निरूपण नहीं कर सके थे। वस्तुतः भारतीय आचार्यों ने काव्य के सौंदर्य विधायक तत्वों को लक्षित और परिभाषित करने के प्रयत्न में स्वतंत्र सिद्धांत ग्रंथों की रचना की थी। वे काव्यशास्त्र निर्माता थे। कवि विशेष या कृति विशेष की रचना सौष्ठव के विश्लेषण में उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य और ध्वनि सिद्धांतों की मीमांसा करते हुए काव्य के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य के आधारभूत तत्वों का स्वरूप निर्दिष्ट किया था। उनकी स्थापनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हिंदी आलोचना ने अपने विकास के प्रत्येक चरण में उनसे प्रेरणा और शक्ति ग्रहण की है। आधुनिक काल से हिंदी आलोचना का आरंभ मानने का अर्थ यह है कि हिंदी के साहित्य मनीषियों ने कवि विशेष या कृति विशेष का अध्ययन करने के बाद उसके महत्व और मूल्य का मूल्यांकन प्रतिपादित करते हुए स्वतंत्र रूप से प्रबंध या निबंध लिखने की शुरुआत आधुनिक काल में की है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। अतः हिंदी आलोचना के स्वरूप को निर्दिष्ट करने के लिए हमें इसी युग से अपनी विचार यात्रा आरंभ करनी होगी। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, किंतु आधुनिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में नहीं मिलता। हिंदी प्रदीप ही एक ऐसा पत्र था जो अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा के रूप में प्रकाशित होने वाली आलोचनाओं के अतिरिक्त इस युग में तीन प्रकार की आलोचनाओं का अस्तित्व भी स्वीकार किया जा सकता है। पहला, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखित सैद्धांतिक आलोचना। दूसरा, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना। तीसरा, इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना। प्रथम वर्ग के अंतर्गत पिंगल, अलंकार, रस, नाटक तथा संपूर्ण काव्यशास्त्र, इन सभी विषयों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। उदाहरण स्वरूप, ज्वाला स्वरूप कृत रुद्रपिंगल, उमराव सिंह कृत छंद महोदधि, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत छंद प्रभाकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत धनाक्षरी नियम रत्नाकर इस युग में रचित उल्लेखनीय पिंगल ग्रंथ हैं। इसी प्रकार रचिराम कृत रामणेश्वर कल्पतरु तथा मुरारीदान कविराज कृत जसवंत जसोभूषण आलोच्य युग के महत्वपूर्ण अलंकार ग्रंथ हैं। रस ग्रंथों में कृष्णलाल कृत रस सिंधु विलास, साहब सिंह कृत रस रहस्य और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमार कर उल्लेखनीय हैं। रस कुसुमाकर में लक्षण स्वच्छ खड़ी बोली गद्य में किए गए हैं, इसीलिए रसशास्त्र के स्पष्ट और सुबोध ज्ञान के लिए यह ग्रंथ महत्व का है। संपूर्ण काव्यशास्त्र की दृष्टि में रखकर किए गए लक्षण ग्रंथों में जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर उल्लेखनीय है। नाट्यशास्त्र संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति भारतेंदु का नाटक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन नाट्यशास्त्र की जानकारी कराने के साथ ही युग प्रवृत्ति का ध्यान रखकर प्राचीन जटिल शास्त्रीय नियमों के छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इन लक्षण ग्रंथों से दो बातें महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होती हैं। एक तो ये इस बात के सूचक हैं कि किसी भी युग में शिक्षित जनता की मनोवृत्ति का प्रवाह समानांतर कई धाराओं में हो सकता है। आलोच्य युग में एक ओर जहाँ पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित एवं समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले विद्वान पिंगल नायिका भेद रस निरूपण एवं अलंकार विवेचन में प्रवृत्त थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह लक्षित करने की है कि समाज को प्रभावित करने वाली कुछ विकृतियों का उल्लेख कर देने मात्र से काव्य समीक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठता। जब तक शास्त्रीय सिद्धांतों का पुनराख्यान करके उनकी कसौटी पर नवीन कृतियों की गंभीर एवं मार्मिक परख नहीं की जाती, तब तक शास्त्रीय सिद्धांतों की पुरानी परंपरा अलग घिसटती रहती है और सामान्य समीक्षा का प्रवाह अलग चलता रहता है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी जाने वाली टीकाओं की परंपरा को आलोच्य युग के पूर्व तक सरदार कवि ने जीवित रखा। उनके द्वारा रचित कवि प्रिया, रसिक प्रिया और बिहारी सत्सई की टीकाएं अधिक लोकप्रिय हुई थीं। आलोच्य युग में बिहारी सत्सई पर लल्लूलाल जी की टीका बालचंद्रिका का संशोधन करके दुर्गादत्त कवि ने सन 1864 में और पुनः ग्रियर्सन ने 1896 में प्रकाशित कराया। यह टीका ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य में थी। प्रभुदयाल पांडे ने भी 1896 ईस्वी में खड़ी बोली गद्य में बिहारी सत्सई की एक अच्छी टीका लिखी थी। इन टीकाओं में कहीं कहीं उत्तम एवं सूक्ष्म काव्य गुणों का संकेत मिल जाता है, इसलिए टीका पद्धति की व्याख्या को भी एक प्रकार की आलोचना कहा जा सकता है। आलोच्य युग में दो इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इनमें से शिव सिंह सेंगर की आलोचना पद्धति में प्रशंसात्मक उक्तियों की बहुलता है। उदाहरण के लिए देवकवि के संबंध में सरोजकार ने लिखा है, शब्दों में ऐसी समाई कहाँ की उनमें इनकी प्रशंसा की जाए। इस प्रकार के वाक्यों के अतिरिक्त जो कुछ कहा गया है वह सब प्रायः सूचना मात्र है। ग्रियर्सन ने अवश्य कुछ कहने की चेष्टा की है, उनमें समीक्षा दृष्टि का आभास मिलता है। तुलसीदास के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने उनके वस्त्र वर्णन की स्वाभाविकता को सराहा है, पात्रों के वार्तालाप के लालित्य की दाद दी है और उनकी भाषाधिकार की प्रशंसा की है, किंतु उनकी यह दृष्टि जायसी सूर और तुलसी जैसे कुछ थोड़े से कवियों के परिचय में ही लक्षित होती है। सामान्यतः उन्होंने एक इतिहासकार की भूमिका अदा करते हुए कवियों और लेखकों का वृत्त ही प्रस्तुत किया है। अतः आलोच्य युग के इतिहास ग्रंथों में दिए गए कवि परिचयों में आलोचना के तत्व नहीं के बराबर है। वस्तुतः भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। उन्होंने श्रीनिवासदास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर कृत बंग विजेता के अनुवाद की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की थी। इसके बाद बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी आदि ग्रंथों की आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हैं, किंतु उनका कृतित्व बहुत कुछ द्विवेदी युग की सीमा में आता है। सब मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात तो हो गया था, किंतु तत्कालीन समीक्षा में न तो सूक्ष्म काव्य सौंदर्य विधायक तत्वों को पहचानने की क्षमता थी और न रचना में निहित जीवन मूल्यों को सौंदर्य तत्व से जोड़कर व्याख्यायित करने की शक्ति। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का गंभीर एवं तात्विक रूप तो नहीं निखरा, किंतु उनकी कई महत्वपूर्ण पद्धतियां अवश्य विकसित हुईं। सामान्यतः इस युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप लक्षित किए जा सकते हैं। शास्त्रीय आलोचना अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना तथा व्याख्यात्मक आलोचना। संस्कृत आचार्यों की पद्धति पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत करने की परंपरा रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी। आलोच्य युग में भी इस परंपरा में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर तथा छंद सारावली और लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजुषा की रचना की। भानुजी ने भूमिका अंग्रेजी में लिखी है और हिंदी के अनेक पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी दिए हैं। दीन जी ने अलंकारों की समुचित जानकारी कराने के उद्देश्य से ही उपर्युक्त ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने यथास्थान हिंदी अलंकारों के समकक्ष फारसी, अरबी और अंग्रेजी अलंकारों का भी उल्लेख किया है। इससे प्रकट है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे पाठकों का ध्यान दोनों ही लेखकों को रहा है। तुलनात्मक मूल्यांकन आलोच्य युगीन समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ सामान्यतः 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा द्वारा बिहारी और सादी की तुलना से माना जाता है, किंतु यह सही नहीं है। बाबू शिव नंदन सहाय के सन 1905 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की कविता की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनकी तुलना शेखर, पद्माकर, तुलसीदास आदि कवियों से की है और उन्हें एक प्रकृत कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। यह तुलना बहुत ही संयत और सारगर्भित है, इसलिए श्री पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कर्ता नहीं कहा जा सकता। यह अवश्य कि उन्होंने तुलना को ही समीक्षा का पर्याय मान लिया और 1908 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक वे सरस्वती में संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव की परीक्षा करते रहे। इसके बाद 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुआ, इसमें भी तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया। आगे चलकर तुलनात्मक आलोचना की धूम मच गई। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की विशद तुलना करते हुए एक दूसरे को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरी पहचानी पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। मिश्र बंधु विनोद में भी शोध परक दृष्टि को महत्व दिया गया था और कवियों के वृत्त संग्रह के साथ उनकी प्राप्य अप्राप्य कृतियों की सूचना तथा उनकी काव्य के संबंध में मत प्रकाश भी किया गया था। मिश्र बंधुओं के अतिरिक्त शोध परक आलोचना के उन नायकों में बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी उल्लेखनीय है। इन सभी का संबंध नागरी पहचानी पत्रिका से रहा है। 1902 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रेरणा से जयपुर से समालोचक पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संपादक बाबू गोपाल राम गहमरी थे। यह गंभीर आलोचना का पत्र था। इस पत्र में समालोचनाएं व्यक्ति विशेष के नाम से न छपकर समालोचना समिति के नाम से प्रकाशित होती थी। समालोचना समिति में श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय द्विवेदी, देवी प्रसाद पूर्ण, बाबू तोताराम, श्रीधर पाठक, विश्वनाथ शर्मा, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, शिवप्रसाद शर्मा, बाबू मुन्नीलाल जैसे साहित्यकार थे। इस पत्र का प्रकाशन अधिक दिनों तक नहीं हो सका, किंतु इससे आलोचना का स्तर निश्चित रूप से ऊंचा हुआ था। परिचयात्मक आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से ही हो गया था। आलोच्य युग में सरस्वती के माध्यम से इस समीक्षा पद्धति में स्थिरता और गंभीरता आई था। समीक्षा का आदर्श स्थिर हुआ। परिचयात्मक आलोचनाएं आलोच्य कृति के सामान्य परिचय, इसकी प्रशंसा या निंदा, आलोच्य विषय या कृति के संबंध में स्वतंत्र लेख, कृति विशेष को किसी परंपरा या ऐतिहासिक संदर्भ में रखने की प्रवृत्ति तथा आलोच्य विषय के प्रति भावात्मक लगाव व्यक्त करते हुए प्रभावाभिव्यंजन के रूप में लिखी गई। सरस्वती में प्रकाशित परिचयात्मक आलोचनाएं प्रायः महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही लिखी गई हैं। द्विवेदी जी समालोचना को पत्रकारिता से अलग करके नहीं देख सके, यही उनकी दुर्बलता या सीमा थी। उन्होंने समालोचक का कर्तव्य निर्धारित करते हुए कहा था, किसी पुस्तक या प्रबंध में क्या लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को लाभ पहुंच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यह विचारणीय विषय है। समालोचक को प्रधानतः इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। द्विवेदी जी ने विषय विवेचन के साथ ही भाषा संबंधी त्रुटियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। आलोचना के क्षेत्र में उनके महत्व को स्वीकार करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। व्याख्यात्मक आलोचना किसी रूढ़ी का अनुसरण न करके आलोच्य विषय की व्यापक उपयोगिता की दृष्टि से रखकर नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं सौंदर्यपरक मूल्यों के आधार पर की जाती थी। कभी कभी परिचयात्मक आलोचना विशद और गंभीर होने पर व्याख्यात्मक आलोचना का रूप ले लेती थी। इस प्रकार की आलोचना का सूत्रपात बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना से कर दिया था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की गंभीर आलोचना करके इस पद्धति को पुष्ट किया था। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक की हिंदी अनुवाद की आलोचना द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया, किंतु ये प्रारंभिक प्रयास मात्र थे। आलोचना की इस शैली का विशद वैज्ञानिक स्वरूप आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समालोचनाओं में प्रतिष्ठित हुआ। वस्तुतः आलोच्य युग की उपर्युक्त सभी प्रकार की आलोचनाओं में प्रतिमान के रूप में दो दृष्टियां लक्षित होती हैं। एक तो परंपरागत शास्त्रीय दृष्टि, जिसके आधार पर आलोच्य कृति का गुण दोष विवेचन करके उसकी उत्कृष्टता या हीनता प्रमाणित की जाती थी। दूसरी नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि, ये आलोच्य कृति के व्यापक प्रभाव के परिणाम को दृष्टि में रखकर उसकी श्रेष्ठता या हीनता घोषित करती थी। जिस तुलनात्मक आलोचना ने आलोच्य युग में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उसका मूल आधार शास्त्रीय दृष्टि से गुण दोष विवेचन ही था। इस आलोचना से प्राचीन कवियों की ओर सामान्य शिक्षित जनता का ध्यान आकृष्ट हुआ। तुलनात्मक समीक्षकों में पद्म सिंह शर्मा का महत्व श्रृंगार वर्णन की दीर्घकालीन परंपरा का निदर्शन करते हुए उसके बीच बिहारी का मूल्यांकन करने के कारण कृष्ण बिहारी मिश्र का महत्व प्राचीन शास्त्रीय समीक्षा को सच्चे रूप में प्रतिष्ठित करने के कारण और लाला भगवान दीन का महत्व बिहारी के बारीकियों को लक्षित करने में है। इन सभी समीक्षकों ने आलोच्य कृतियों का गंभीर अध्ययन किया था, इसलिए इनके कथनों में तत्व और प्रभावोत्पादन की क्षमता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि चाहे द्विवेदी जी की कठोर नैतिक दृष्टि हो, चाहे पद्म सिंह शर्मा की उल्लसित भावतरल दृष्टि, चाहे मिश्र बंधुओं की लचीली और अस्थिर सौंदर्य दृष्टि हो, चाहे लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र की स्थिर शास्त्रीय दृष्टि, प्राचीन रस दृष्टि से किसी का कोई विरोध नहीं था। अपनी सीमाओं के बावजूद ये सभी आलोचक रसात्मक कविता को ही महत्व देते रहे। आलोच्य युग में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों के कुछ अनुवाद भी प्रस्तुत किए गए। इस युग के आरंभ होने से कुछ पूर्व जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श नाम से पोप के एसी ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद प्रस्तुत किया था। सन 1905 में आचार्य शुक्ल ने एडिसन के एसी ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया। बाबू शिवनंदन सहाय ने अपनी व्यवहारिक समीक्षा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने काव्य सिद्धांत प्रतिपादक कुछ निबंधों में कई अंग्रेजी लेखकों का आधार दिया। इन सारे प्रयत्नों ने एक ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जिस पर आगे चलकर आचार्य शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी के वैज्ञानिक आलोचना का भव्य भवन निर्माण किया। भारत में समालोचना काव्य सिद्धांत रूपण के रूप में प्रचलित थी। कवियों की निजी विशेषताओं को या तो सूक्तियों और प्रशस्तियों के माध्यम से प्रकट किया जाता था, अथवा टीकाओं के अंतर्गत कभी कभी काव्य सौंदर्य विधायक सूक्ष्म तत्वों का संकेत कर दिया जाता था। पाश्चात्य साहित्य में परिचित होने और उसका स्वस्थ प्रभाव ग्रहण करने का परिणाम यह हुआ कि आलोचना एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्य हुई। कवि विशेष के सामान्य गुण दोष प्रकट करने के साथ ही उसके काव्य की मूल प्रवृत्तियों की छानबीन, उसमें निहित देश काल सापेक्ष और शाश्वत मूल्यों का उद्घाटन करने तथा व्यापक मानवीय मूल्यों की दृष्टि से उसका महत्व प्रतिपादन करने की नई परिपाटी का विकास आगे चलकर आचार्य शुक्ल की आलोचनाओं द्वारा हुआ। द्विवेदी युग की उपलब्धि। उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का व्यापक विकास एवं प्रभूत उत्कर्ष हुआ। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों का पुनराख्यान करके तथा पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों को भारतीय संस्कारों के अनुकूल ढालकर दोनों के समन्वित आधार पर हिंदी के लिए उचित शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांतों का निर्माण माना जा सकता है। साथ ही इन सिद्धांतों का उचित उपयोग करते हुए व्यावहारिक समीक्षा की व्याख्यात्मक पद्धति के विकास को इस युग की दूसरी महती उपलब्धि मान सकते हैं। इनके अतिरिक्त इस युग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कृतियों के मूल्यांकन में सामाजिक मूल्यों को महत्व देने की परंपरा का विकास। यह परंपरा भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। इस युग में उसे और महत्व दिया गया था। यह महत्व आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी युग की प्रगतिशील चेतना की सक्रियता का द्योतक है। यह सर्वविदित है कि द्विवेदी जी नायिका भेद और रीतिवाद के विरोधी थे। वे अपने युग के साहित्य को नवजागरण की वैज्ञानिक जीवन दृष्टि के अनुकूल प्राणवान बनाना चाहते थे। इसीलिए जब मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती प्रकाशित हुई थी, उन्होंने उसकी समीक्षा करते हुए लिखा, यह सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, आत्मविस्मृतियों को पूर्व स्मृति दिलाने वाला है, निरुत्साहियों को उत्साहित करने वाला है, उदासीनों के हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। विचार विमर्श पृष्ठ संख्या 195। आचार्य द्विवेदी के साथ ही श्री बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक रचनाओं की श्रेष्ठता का निर्णय देश और समाज की भलाई में उनके योगदान के आधार पर करते थे। बंगला नाटक अश्रुमती की हिंदी अनुवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा, हमारी समझ में नहीं आया कि इसके बनाने वाले ने क्यों इस पुस्तक को बनाया है, बनाने से उसका उद्देश्य क्या था, देश की भलाई, समाज की भलाई, साहित्य की भलाई, तीनों में कौन सी बात इस पुस्तक के बनाने में सोची गई। गुप्त निबंधावली पृष्ठ संख्या 543। आचार्य द्विवेदी की समर्थन मूलक और गुप्त जी की विरोध मूलक आलोचनाएं एक ही समीक्षा दृष्टि का समर्थन करती हैं। वह दृष्टि है रचनाओं की श्रेष्ठता का निर्णय मात्र कला की दृष्टि से न करके उनकी सामाजिक नैतिक उपयोगिता के आधार पर करना। यही दृष्टि आगे चलकर आचार्य शुक्ल के लोक मंगल के प्रतिमान की प्रतिष्ठा का आधार बनी। आचार्य शुक्ल की आलोचना में पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षा पद्धतियों के संश्लिष्ट उत्कर्ष के साथ ही मूल्यांकन की लोक मांगलिक दृष्टि का भी चरम विकास हुआ। उन्होंने द्विवेदी युग की समस्त रचनात्मक ऊर्जा को आत्मसात करके हिंदी आलोचना को ऐसी ऊंचाई प्रदान की जिसे आज भी श्लाघ्य और अनुकरणीय माना जाता है। उनकी आलोचना द्विवेदी युग का अतिक्रमण करके भविष्य का पथ प्रशस्त करने वाली है। उन्होंने आगे चलकर विकसित होने वाले अनेक समीक्षा सिद्धांतों एवं पद्धतियों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। हिंदी आलोचना के प्रशस्त पथ पर वे एक ऐसे आलोक स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिसके प्रकाश में हम आगे और पीछे दोनों ही ओर बहुत दूर तक देख सकते हैं। छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना। द्विवेदी युग की जीवन दृष्टि मूलतः नैतिक एवं सुधारवादी थी। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में भी इस जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए इस युग के समीक्षक काव्य की उत्कृष्टता की परख नैतिकता के स्तर पर ही करते थे। आचार्य शुक्ल का रसवाद आलंबन में ऐसे धर्मों की प्रतिष्ठा पर बल देता था जो लोक के लिए आदर्श उपस्थित करते हुए उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। इसीलिए उन्होंने ऐसे काव्य को उत्कृष्ट माना जिसका नायक लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त हो, अर्थात पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के दमन में तत्पर हो, जिस काव्य के नायक सुख, सौंदर्य, माधुर्य एवं प्रेम क्रीड़ा में ही लीन रहता है, उसकी महत्ता आचार्य शुक्ल को मान्य नहीं थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। तरुण कवियों प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और रामकुमार वर्मा आदि ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को काव्य के लिए अनावश्यक समझा। इन कवियों ने काव्य के नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। पंत के शब्दों में नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागिनियां, नई कल्पनाएं फूट पड़ी। पल्लव की भूमिका। इस नवोन्मेष के परिणाम स्वरूप छायावादी काव्य में व्यक्ति चेतना को महत्व प्राप्त हुआ। उसका यही व्यक्ति भाव प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुआ। छायावादी कवियों ने वैयक्तिक भावानुभूति, कल्पना की अतिशयता, भाषा की कोमलता, अभिव्यक्ति में लाक्षणिकता एवं चित्र व्यंग्यात्मक शैली के प्रयोग तथा सौंदर्य प्रियता पर अधिक बल दिया। इन कवियों के मूल्यांकन के लिए जिस नवीन समीक्षा सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई उसे छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना कहते हैं। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ पंडित नंदुलारे वाजपेयी माने जा सकते हैं। वाजपेयी जी ने भारतीय रस सिद्धांत को पाश्चात्य सौष्ठववाद से जोड़कर इन शब्दों में अपने काव्यादर्श की घोषणा की। काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। ठीक यही घोषणा अपनी काव्य प्रतिभा के उन्मेष काल में प्रसाद जी ने हिंदू के माध्यम से की थी। साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई क्रिया निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। इससे स्पष्ट है कि द्विवेद युग के भीतर से स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां स्फुटित होने लगी थी। साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति ही स्वच्छंदतावाद का केंद्रीय तत्व है। कल्पना चारुता, आनंद प्रियता, भावात्मकता, मानवतावाद, राष्ट्रीय रहस्यात्मकता आदि विशेषताएं तो इसके अनुसारी परिणाम के रूप में इसमें स्वतः आ जाती हैं। स्वच्छंदतावादी समीक्षा को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। आलोचकों ने पंत जी के पल्लव की तुलना वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के लिरिकल बैलेट से की है और उसे हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो बताया है। हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवियों पर वर्ड्सवर्थ, शैली, किट्स आदि का प्रभाव भी स्वीकार किया जाता है। ऐसी स्थिति में हिंदी स्वच्छंदतावादी या छायावादी आलोचना को पाश्चात्य रोमांटिक साहित्य शास्त्र के समकक्ष सरलता से रखा जा सकता है। दोनों ही एक प्रकार की परिस्थितियों की उपज भले ही न हो, या दोनों में सभी बातों की समानता भी चाहे न हो, किंतु काव्य की स्वतंत्र सत्ता, उसमें व्यक्ति चेतना का महत्व, कल्पना तत्व की प्रधानता, प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, विस्मय और प्रेम का भाव तथा आनंदवादी उद्देश्य दोनों में ही समान रूप से मान्य है। पंत जी की भांति अन्य छायावादी कवियों ने भी अपनी रचनाओं के साथ लंबी भूमिकाएं लिखकर छायावाद की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। प्रकारांतर से छायावादी समीक्षा दृष्टि को पुष्ट और समृद्ध किया। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचकों में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र उल्लेखनीय है। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, निराला और पंत की समीक्षा स्वच्छंदतावादी एवं सौंदर्यबोधक मूल्यों की दृष्टि में की और उन्हें छायावाद के बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। आचार्य शुक्ल की नैतिक एवं लोकमंगल केंद्रित आलोचना दृष्टि का अतिक्रमण करके आपने सौंदर्य बोधात्मक एवं सांस्कृतिक आलोचना दृष्टि की प्रतिष्ठा की। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह ऐतिहासिक महत्व का कार्य समझा जाएगा। शांतिप्रिय द्विवेदी ने गांधी एवं रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना। उनकी समीक्षा पद्धति में तर्कपूर्ण विश्लेषण का अभाव लक्षित होता है। वे छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अभिभूत थे। उनकी समीक्षा ऐसी प्रभावाभिव्यक्ति के रूप में सामने आई। डॉक्टर नगेंद्र ने 1938 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा छायावादी स्वच्छंदतावादी मूल्यों की दृष्टि से किया। यह समीक्षा अधिक संतुलित एवं तर्कपूर्ण है। 1940 ईस्वी तक आते आते छायावाद ह्रासोन्मुख हो गया। स्वयं छायावादी कवि कल्पना के स्वप्नलोक से उतरकर धरती पर आ गए। इसके साथ ही स्वच्छंदतावादी आलोचना का भी ह्रास हुआ और देखते देखते प्रगतिवादी कविता का दौर आरंभ हुआ। इसके साथ ही प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति का उदय हुआ। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना के विकास काल में ही हिंदी में एक अन्य आलोचना पद्धति का उन्मेष देखा गया था, इसे प्रभाववादी समीक्षा कहते हैं। इसके उन्मेष के मूल में भी छायावाद की भावकूलता ही प्रधान थी, इसलिए यहाँ संक्षेप में इसका निदर्शन अवांछित न होगा। प्रभाववादी आलोचना। प्रभाववादी आलोचना काव्य वस्तु के प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया है। इसमें सहृदय आलोचक सबसे पहले काव्य को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है और फिर उसे मार्मिक ढंग से व्यक्त करके दूसरों तक पहुंचाता है। इस समीक्षा में आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लग जाता है और प्रायः आलोच्य विषय से दूर चला जाता है। प्रभाववादी समीक्षक कलाकृति से प्रभावित होकर नूतन कला को जन्म देता है। एक प्रकार से यह आलोच्य कवि या समानधर्मी बनकर सामने आता है। हिंदी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई की आलोचना करते हुए प्रभाववादी आलोचना का आभास दिया था। छायावादी युग के आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी की आलोचना प्रायः प्रभाववादी ढंग की ही हो गई है। डॉक्टर श्री भगवत शरण उपाध्याय ने भक्त गुरु सिंह भक्त की नूरजहाँ की आलोचना इसी पद्धति पर की है। वे स्वयं कहते हैं, नूरजहाँ के अध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा, फलतः कुछ अनुकूल अंतर्ग्रंथियाँ खुल पड़ी। मैं एक बात को स्पष्टतया कह देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रयास समालोचक का नहीं, प्रत्युत सहानुभवी और समान धर्मी का है। मैं प्रभाववादी हूँ। जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है, प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता। यह उपाध्याय जी प्रगतिशील विचारक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्ध लेखक भी रचना विशेष से प्रभावित होकर प्रभावाभिव्यंजक शैली में आलोचना कर सकता है। छायावाद युग के अन्य आलोचकों में कहीं कहीं प्रभावाभिव्यंजक की झलक मिलती है। यह होते हुए भी हिंदी आलोचना साहित्य में प्रभाववादी समीक्षा का उचित विकास नहीं हो पाया। मार्क्सवादी समीक्षा की बौद्धिक तर्कपूर्ण एवं वस्तु विश्लेषणी पद्धति ने इसके विकास को अवरुद्ध कर दिया। स्वच्छंदतावादी एवं प्रभाववादी आलोचनाओं के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में समाजशास्त्री या प्रगतिवादी, मनोविश्लेषिक या अंतश्चेतनावादी तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक इन तीन नवीन समीक्षा सिद्धांतों एवं पद्धतियों का विकास हुआ। इनके साथ ही द्विवेदी युग में विकसित शास्त्रीय समीक्षा या सैद्धांतिक समीक्षा एवं अनुसंधान परक समीक्षाओं का भी विशेष उत्कर्ष हुआ। अगले पृष्ठों में इनका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा। मनोवैज्ञानिक या अंतश्चेतनावादी आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल उत्स फ्रायड का अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत है। फ्रायड के अनुसार मानव मन की अनेक वासनाएं धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक प्रतिबंधों के कारण अंतर्मन में दबी रह जाती हैं। ये वासनाएं अवचेतन मन में चेतन के क्षेत्र में आने तथा व्यक्त होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। मानव का यह अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है। चेतन और अवचेतन के बीच मन की अर्धचेतन स्थिति भी होती है। इसी से होकर दमित वासनाएँ अवचेतन मन में प्रविष्ट होती रहती हैं। ये दमित वासनाएं काम मूला होती हैं। कला और साहित्य के माध्यम से इन वासनाओं की अभिव्यक्ति सुंदरतम रूप में होती है, क्योंकि यहाँ इनका उदात्तीकरण हो जाता है। कलाकार अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जब उसकी प्रेम, यश, धन, शक्ति संबंधी ईष्णाएं यथार्थ जगत में पूर्ण नहीं हो पाती, तो वह अपनी वासनाओं की तुष्टि कल्पनालोक में करने लगता है। इस व्याख्या के अनुसार काव्य कला दमित काम वासना की उदात्त काल्पनिक अभिव्यक्ति है। मनोवैज्ञानिक आलोचना कवि के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन के बल पर उन वासनाओं का विश्लेषण करती है जो कवि के मन में दमित रह गई होती है और जिनकी अभिव्यक्ति उसकी काव्यकृतियों में होती है। रायट के बाद उनके शिष्य एडलर और युंग ने उनकी मान्यताओं को व्यापक आधार देने की चेष्टा की। एडलर ने काम भावना से अधिक महत्व अधिकार भावना को दिया। उसने अधिकार भावना को शारीरिक हीनता जनित मनोग्रंथि में से उद्भूत माना और कला को इस हीनता की पूर्ति का साधन बताया। युंग ने फ्रायड की काम भावना और एडलर की अधिकार भावना दोनों को ही एकांगी बताया। उसने अवचेतन मन के भी दो भेद किए हैं, वैयक्तिक अवचेतन और सामूहिक अवचेतन। इसके अनुसार यह सामूहिक अवचेतन ही सारी हमारी समस्त शक्तियों का अंधकारमय कोष है। इसमें हमारे पूर्वजों के लाखों वर्षों के अनुभव तथा विश्व में घटित युगों युगों की ऐतिहासिक घटनाएं परत दर परत संचित रहती है। यह अनुभव अभिव्यक्ति के लिए बिंबों और प्रतीकों का सहारा लेते हैं। संसार के साहित्य में ऐसे अनेक आद्य बिंब लक्षित किए जा सकते हैं जिनकी व्याख्या से मानव की विकास यात्रा की आदिम स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह आदि बिंब और मिथक को लगभग एक ही चीज मानते हैं। वे कहते हैं, मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है, इसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी जिज्ञासाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में अभिव्यक्त करता था। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अवचेतन मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द पृष्ठ संख्या 77। किसी युग विशेष में जब व्यक्ति या समष्टि का चेतन दृष्टिकोण पुराना पड़ जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए यह सामूहिक अवचेतन क्रियाशील होता है और प्रतिभावान युगदृष्टा या कवि सामूहिक अवचेतन से प्रेरित होकर उस नवीन युग चेतना को लेकर सामने आता है जिसकी आवश्यकता जन जन को होती है। युग की मान्यता का आधार व्यापक है और इसके लिए इसके द्वारा युग विशेष की काव्य योजना की उचित व्याख्या हो सकती है। हिंदी में इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाशील आलोचक माने जा सकते हैं। साहित्य सर्जना लिखकर उन्होंने मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रतिष्ठा की थी। इसके बाद विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा आदि कृतियों में उनका मनोवैज्ञानिक आलोचक निरंतर सजग रहा है। जोशी जी के अनुसार हिंदी का भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का ही प्रतीक है। शाहवादी काव्य में भी उन्होंने यौन संबंधी मनोभावनाओं को भी शब्दजाल में अगुंठित शालीन रूप में देखा है। जोशी जी के चिंतन व फ्रायड के काम मनोविज्ञान का विशेष प्रभाव है। अन्य मनोवैज्ञानिक आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज उपाध्याय और डॉक्टर और अज्ञेय का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं, किंतु वे मनोविज्ञान को रसवाद का पूरक मानते हैं। अज्ञेय के अनुसार अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर कलाकार जब विद्रोह कर देता है तो उसका यह विद्रोह ही कलात्मक सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार अज्ञेय जी ने प्रकारांतर से कला के मूल में हीनता की अनुभूति और उसकी पूर्ति के प्रयत्न की बात तो स्वीकार किया है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने हिंदी कथा साहित्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छी आलोचना की है। आपके साहित्य या का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नामक महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित हुई है। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद खेतान ने अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति लिखकर उनके उपन्यासों में चिरंतन नारी के आद्यबिंब और काव्य कृतियों में विज्ञ पुरुष के आद्यबिंब का अनुसंधान किया है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रचना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसीलिए उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। पश्चिम में इस प्रकार के अध्ययन की समृद्ध परंपरा है। मनोविश्लेषण के चलते रचनाकार की रचना प्रक्रिया का भी अध्ययन होने लगा है, किंतु इस समीक्षा पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना मनोविश्लेषण के सहारे कथा साहित्य में आचरणों पात्रों के आचरणों की व्याख्या कर सकती है। वर्णित और घटित घटनाओं के आधारभूत मनोवैज्ञानिक कारणों का अनुसंधान कर सकती है। पुरुष और नारी पात्रों में आद्य पुरुष और आद्य नारी के बिंबों की झलक देख सकती है। रचनाकार द्वारा प्रयुक्त विशेष प्रकार के प्रतीकों और बिंबों के भीतर छिपे अभिप्राय की व्याख्या कर सकती है। मिथकीय रचनाओं और कल्पनाओं के भीतर छिपे हुए जीवन सत्य का उद्घाटन कर सकती है। फैंटेसी के भीतर झिलमिलाते हुए यथार्थ का विवेचन कर सकती है, किंतु साहित्य और कला के समग्र सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकती। कहा जा सकता है कि कला का केवल वही पक्ष जो कलात्मक रूप विधान की प्रक्रिया से संपृक्त है मनोविज्ञान का विषय हो सकता है। जो पक्ष कला की आधारभूत प्रकृति से संबद्ध है वह सदैव मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा इसलिए इधर मनोवैज्ञानिक आलोचना का जोर कम पड़ गया है, अब मिथकी आलोचना का प्रचलन बढ़ गया है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर जगदीश श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्विनी पाराशर, डॉक्टर उषापुरी, विद्यावाचस्पति, प्रभुनाथ आदि की मिथकी आलोचनाएं उल्लेखनीय हैं।